दुनिया के सबसे एफिशिएंट सोलर पैनल्स पसीना बहाना क्यों सीख रहे हैं? जब सोलर की बात आती है तो आप मानेंगे कि ज्यादा धूप मतलब ज्यादा पावर, लेकिन सच तो ये है कि सोलर पैनल्स को गर्म होना बिल्कुल पसंद नहीं है। असल में टेम्परेचर में हर डिग्री बढ़ने पर ये पैनल्स अपनी एफिशिएंसी का 0.5% खो देते हैं, और जिन रेगिस्तानों में हम अपने सबसे बड़े सोलर फार्म बना रहे हैं वहाँ इसका मतलब 18% परफॉर्मेंस गिर सकती है। लेकिन साइंटिस्ट्स ने कुदरत के तरीकों से इसका हल निकाल लिया है। वे उसी कूलिंग ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंसानों को ठंडा रखती है। सोलर पैनल्स हाइड्रोजेल का इस्तेमाल करके पसीना बहा सकते हैं। नतीजे हैरान करने वाले हैं। हाइड्रोजेल एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन दोनों बढ़ाने में मदद करता है, किसी मूविंग पार्ट की जरूरत नहीं। तो ये मुमकिन कैसे है, और क्या ये एक्स्ट्रा फायदा इस सोलर जुगाड़ डीएच के लायक है? मैं मैट फेरेल हूँ, एंडिसाइडेड में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए लाए हैं ग्राउंड न्यूज। तो साइंटिस्ट्स ने सोलर पैनल्स को इंसानों की तरह पसीना बहाने का तरीका खोज लिया है। थाईलैंड के विस्टेक, सऊदी अरब के कोस्ट के रिसर्चर्स और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की टीमों सभी ने हाइड्रोजेल नामक खास पानी सोखने वाले मटेरियल्स का इस्तेमाल करके रोमांचक प्रोग्रेस की है, जो रात में नमी सोख लेते हैं और दिन में धीरे धीरे उसे छोड़ डालकर पैनल्स को ठंडा रखते हैं। नतीजे प्रभावशाली हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो आप खुद से पूछ रहे होंगे, क्यों? वे असल में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात जो आपको चौंका सकती है, गर्मियों के सबसे गर्म दिनों में ही सोलर पैनल सबसे खराब परफॉर्म करते हैं, कम से कम एफिशिएंसी के मामले में। सतह का टेम्परेचर हर डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर पैनल्स अपनी एफिशिएंसी का 0.2 से 0.5% खो देते हैं। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में यह 18% परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकता है। ये एक काफी गर्मागर्म मुद्दा है असल में भी और वैसे भी। लेकिन गर्मी सोलर पैनल्स को नुकसान क्यों पहुंचाती है? वे असल में गर्मी को बिजली में नहीं बदलते हैं। उन सतहों के ठीक नीचे बिलियर्ड्स का एक कॉम्प्लिकेटेड गेम चल रहा होता है। सूरज की रोशनी इलेक्ट्रॉन्स को होल्स से बाहर निकालती है और उम्मीद होती है कि वे बिजली बनाने के लिए सोलर सेल जंक्शन के पॉकेट्स में चले जाएंगे। एक भी स्टेप गलत तो चार्ज नहीं मिलेगा। गर्मी से सब कुछ ज्यादा उछलता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना मुश्किल इससे पहले कि वे पार्टिकल्स से टकराकर वापस जाएं। पैनल्स कितने गर्म मापना मुश्किल। स्टडीज अक्सर धूप वाली सतह के बजाय पीछे से मापती हैं, जहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन मेजरमेंट में अनिश्चितताओं के बावजूद पैनल्स को सिर्फ कुछ डिग्री ठंडा करने से भी एफिशिएंसी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम उन्हें ठंडा कैसे करें? हम कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर्स जैसा तरीका अपना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आप सोच रहे होंगे, क्यों ना उन पैनल्स पर कुछ पंखे और वाटर पंप्स लगा दें? एक्टिव कूलिंग कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, एक्टिव कूलिंग बिजली इस्तेमाल करती है। जब सोलर पैनल पहले से ही गर्मी में स्ट्रगल कर रहा हो तो आप नहीं चाहेंगे कि कूलिंग सिस्टम जितनी पावर बचाता है उससे ज्यादा खर्च कर दे। ये वैसा ही है जैसे खिड़कियां खोलकर एयर कंडीशनिंग चलाना। तो इसका विकल्प क्या है? वो है पैसिव कूलिंग। कोई मूविंग पार्ट्स नहीं, बिजली की जरूरत नहीं। हीट सिंक के बारे में सोचिए, जैसे वेंट्स या हाइड्रोजेल। पैसिव सिस्टम्स आमतौर पर एक्टिव सिस्टम्स से कम पावरफुल होते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा फायदा है, एक बार इंस्टॉल होने के बाद वे दशकों तक बिना मेंटेनेंस के काम करते हैं। उन सोलर पैनल्स के लिए जिन्हें 20-30 साल तक छत पर रहना है, आपको ठीक यही चाहिए। चुनौती ये पता लगाना है कि सोलर पैनल्स के लिए पैसिव कूलिंग को कैसे काम में लाया जाए। हम सदियों से बिल्डिंग्स के लिए पैसिव कूलिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन पीवीज पूरी तरह से एक अलग चीज है। और यहाँ आते हैं हाइड्रोजेल। ये पॉलीमर बेस्ड जेल्स शायद परफेक्ट पैसिव कूलिंग सॉल्यूशन हों। वे पोरस और परमीएबल होते हैं, जिससे वे रात में पानी सोख लेते हैं और गर्म दिनों में धीरे धीरे उसे छोड़ देते हैं। ये सुनने में भविष्य की बात लग सकती है, लेकिन हाइड्रोजेल 1894 से मौजूद हैं। असल में आप शायद उन्हें रोज खाते भी हों। आपके खाने में जो जिलेटिन होता है वो एक हाइड्रोजेल है। वे दवाओं, डायपर और वाइन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सोलर पैनल्स में वे ऐसे काम करते हैं। आप पैनल के पीछे एक पतली लेयर लगाते हैं और वे अपने आप पसीना बहाते हैं। ठंडी रातों में वे हवा से नमी सोखते हैं। जब दिन में सूरज पैनल को गर्म करता है तो वे धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं और इवेपोरेशन से पैनल को ठंडा करते हैं। ये वही ट्रिक है जो इंसानों को इस प्लेनेट के सबसे अच्छे टेम्परेचर रेगुलेटर्स में से एक बनाती है। हमारा पसीना लगभग 1000 वाट गर्मी को खत्म कर सकता है। तो क्यों ना इस बेहद सफल बायोलॉजिकल तरीके को अपनाकर सोलर पैनल्स को ठंडा करने के काम में लगाया जाए। चलिए थाईलैंड के विस्टेक के ब्रेकथ्रू से शुरू करते हैं। उन्होंने एक ऐसा हाइड्रोजेल बनाया जिसने सोलर पैनल के टेम्परेचर को 23 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया, यानी झुलसा देने वाले 70 डिग्री सेल्सियस से घटकर कहीं ज्यादा मैनेजेबल 47 डिग्री सेल्सियस तक। इस जबरदस्त कूलिंग का सीधा असर 12.3% एफिशिएंसी बूस्ट के रूप में दिखा, लेकिन उनके तरीके को शानदार बनाती है। इसका वजन, जहां दूसरे कूलिंग सिस्टम्स सोलर इंस्टॉलेशन में सैकड़ों पाउंड वजन जोड़ सकते हैं, विस्टेक का हाइड्रोजेल सिर्फ 11 पाउंड प्रति स्क्वायर मीटर है। ये फेज चेंज मटेरियल्स PCM जैसी टेक्नोलॉजी से 80% हल्का है। छतों पर सोलर पैनल्स लगाते या दुनिया भर में भेजते समय लागत और स्ट्रक्चरल सेफ्टी दोनों के लिए एक एक पाउंड मायने रखता है। उन्होंने ये कर कैसे दिखाया? उनका हाइड्रोजेल दो प्रमुख कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करता है जो टैग टीम की तरह काम करते हैं। पहली लेयर एक टेम्परेचर सेंसिटिव स्विच या गेट है। जब सोलर सेल गर्म होता है तो ये खुल जाता है, सेल्स को ठंडा करने के लिए पानी बाहर निकलता है, ठंड होने पर ये बंद हो जाता है। दूसरी लेयर एक सुपर पावर्ड स्पंज सी है जो पानी सोखने और बनाए रखने में बेहद अच्छी है। साथ मिलकर वे एक सिस्टम बनाते हैं जो बिना इंसानी दखल के पैनल के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। नतीजे खुद बोलते हैं। उन सिंपल हाइड्रोजेल डिजाइन्स के खिलाफ टेस्टिंग में जिनमें वो फैंसी ऑटोमेटिक गैराज डोर नहीं था, विस्टेक का ड्यूअल लेयर अप्रोच विनर था। इससे भी बेहतर, स्कूल के इंडस्ट्री पार्टनर्स इतने इंप्रेस्ड हैं कि वे इस टेक्नोलॉजी को बाजार में लाने की बात कर रहे हैं। ये उत्साह बताता है कि हम शायद पसीना बहाने वाले सोलर पैनल्स को उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी देख सकते हैं। विस्टेक का ब्रेक थ्रू प्रभावशाली है, लेकिन एक और रिसर्च ग्रुप है जो हैरान करने वाला तरीका लेकर आया है, जिसे सऊदी के तपते रेगिस्तान और अपस्टेट न्यूयॉर्क की जमा देने वाली सर्दियों दोनों में टेस्ट किया गया है, जिसके नतीजों से पैनल्स 200% से ज्यादा चल सकते हैं। लेकिन इसमें जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमें इन रिन्यूएबल एनर्जी एडवांसेस के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। सोलर इनोवेशन के बारे में आप कहां पढ़ते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वे क्रांतिकारी ब्रेक थ्रू हैं जो एनर्जी बदल देंगे या सिर्फ एक ओवरहाइप्ड ग्रीन टेक बबल। जब कहानियों में अत्याधुनिक साइंस, अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट के दावे हों, तो पूरी तस्वीर कैसे मिलेगी? यहीं पर आज के स्पॉन्सर ग्राउंड न्यूज काम आते हैं। नासा के पूर्व इंजीनियर द्वारा बनाया गया ग्राउंड न्यूज 50,000 से ज्यादा सोर्सेज से खबरें जुटाता है और पॉलिटिकल बायस, क्रेडिबिलिटी, ऑनरशिप और कवरेज के पीछे के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को भी बताता है। उदाहरण के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी या ब्रेक थ्रू की कोई भी बड़ी खबर लें, जैसे ट्रंप का ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स रोकना। एक क्लिक से मैं इसे कवर करने वाले हर आउटलेट का सारांश, पॉलिटिकल बायस, ऑनरशिप और फैक्चुअलिटी ब्रेकडाउन देख सकता हूं। एक सेंट्रल लीडिंग सोर्स इस कैंसिलेशन को सीधे साधे तरीके से पेश कर सकता है। एक लेफ्ट लीनिंग सोर्स इस बात पर जोर दे सकता है कि जब हमें ज्यादा पावर की जरूरत है तो एनर्जी प्रोजेक्ट्स को क्या खत्म करना एक कॉग्निटिव बायस है। एक राइट लीनिंग सोर्स वो शायद रिन्यूएबल्स को मिलने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट पर फोकस करे। आप मेरा चैनल देखते हैं तो आपको इन कहानियों के पीछे का साइंस और टेक पसंद होगा। ग्राउंड न्यूज आपको कवरेज कंपेयर करने, बायस पहचानने और मिसिंग डिटेल्स पकड़ डीडीएचने में मदद करता है। मुझे ब्लाइंड स्पॉट फीड पसंद है। ये एक पक्ष की कम रिपोर्ट की गई कहानियों को दिखाता है। इसने मुझे ब्लाइंड स्पॉट्स पहचानने और हेडलाइंस की बारीकियां समझने में मदद की। लिमिटेड टाइम के लिए आप मेरा इस्तेमाल किया हुआ प्लान लगभग आधी कीमत पर पा सकते हैं। बस ground.news/undecided पर जाइए या वेंटेज प्लान पर 40% छूट के लिए QR कोड स्कैन करें। ग्राउंड न्यूज और चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। पूरी तस्वीर समझने की बात करें तो चलिए उस रिसर्च को देखते हैं जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसे बिल्कुल अलग अलग क्लाइमेट में टेस्ट किया गया है। सऊदी अरब के कॉस्ट के रिसर्चर्स सालों से अपने तरीके को परफेक्ट कर रहे हैं और इसके नतीजे काफी इंप्रेसिव हैं। अरब के रेगिस्तान की भीषण गर्मी में उनके हाइड्रोजेल ने औसतन 12.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप हासिल किया। उनकी बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस 14.1 डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी आपको कई नंबर्स बताए। अगर ये कंफ्यूजिंग था तो मेन पॉइंट ये है, टेस्टिंग में कास्ट के हाइड्रोजेल ने पैनल की एफिशिएंसी 13.1% से बढ़ाकर 14.7% कर दी। ये परफॉर्मेंस में 12.2% का सॉलिड जंप है। लेकिन कीयूस्ट का काम और भी खास है। रिसर्चर्स ने सिर्फ सऊदी के रेगिस्तान में टेस्ट नहीं किया, उन्होंने ठंडे अपस्टेट न्यूयॉर्क में भी ट्रायल्स किए, ये देखने के लिए कि क्या उनका कूलिंग सिस्टम अलग अलग क्लाइमेट्स को हैंडल कर सकता है। हालांकि न्यूयॉर्क में कूलिंग के फायदे उतने ड्रामेटिक नहीं थे, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग से कुछ और भी कीमती बात सामने आई। हाइड्रोजेल कूलिंग वाले पैनल्स बिना प्रोटेक्शन वाले पैनल्स से 200% ज्यादा चले। इकोनॉमिक्स के लिए ड्यूरेबिलिटी में ये बढ़ोतरी बहुत बड़ी है। कॉस्ट का अनुमान है कि हाइड्रोजेल एनर्जी की लेवलाइज्ड कॉस्ट को, यानी पैनल की लाइफ टाइम में, पर यूनिट पावर की टोटल कॉस्ट को 18% तक कम कर सकता है। कम लागत और लंबी लाइफ, सोलर इंडस्ट्री को बिल्कुल यही चाहिए। और इसमें एक और बढ़िया ट्रिक है, उनका हाइड्रोजेल सतहों से इतनी मजबूती से चिपकता है कि आप इसे मौजूदा सोलर इंस्टॉलेशंस पर भी लगा सकते हैं। पूरे सोलर एरे को बदलने के बजाय आप बस इस कूलिंग लेयर को लगाकर पुराने कम एफिशिएंट पैनल्स में नई जान फूंक सकते हैं। मैं अपने सोलर पैनल्स पर ऐसा कुछ लगाना चाहूंगा। ये सब सुनने में काफी इंप्रेसिव लगता है, तो जाहिर है आपके दिमाग का वो शक की हिस्सा अब एक्टिव हो रहा होगा। मुझे पता है क्योंकि आप लोग मुझे हर हफ्ते याद दिलाते हैं, और ऐसा करना सही भी है। एक्साइटेड होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं और अभी बहुत रिसर्च किया जाना बाकी है। पहली कमी सबसे कॉमन है और जिससे पुराने व्यूअर्स पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ हैं, कमर्शियलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो कागज पर, लैब में और प्रोटोटाइप टेस्टिंग में भी बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे हमारे सोलर जेल्स, उन्हें अक्सर मार्केट तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और इसके पीछे अनगिनत और कई बार अप्रत्याशित कारण होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल है, स्केल अप करना मुश्किल है और सप्लाई चेन मैनेज करना मुश्किल है। कुछ अनजानी मुश्किलें भी होती हैं या फिर बड़ी बड़ी कमजोरियां जो प्रोसेस के बिल्कुल आखिर में ही सामने आती हैं। सोलर हाइड्रोजेल्स को यहां एक बड़ा फायदा है क्योंकि वे कुछ बहुत प्रॉमिसिंग रियल वर्ल्ड टेस्ट्स के साथ लैब से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी उन पर दाम नहीं लगाऊंगा। मास मार्केट तक का रास्ता लंबा और अनप्रेडिक्टेबल है, और इसी से जुड़ी है कॉस्ट। आज हमने जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, उनमें से कई अपने मटेरियल्स के कॉस्ट इफेक्टिव होने का जिक्र करती हैं, फिर भी ये आम सोलर इंस्टॉलेशन कॉस्ट के ऊपर एक एडिशनल खर्चा है। ये एक्स्ट्रा खर्चा एफिशिएंसी बढ़ा सकता है और इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फिर भी पैसों की तंगी वाली और अपग्रेड से हिचकिचाने वाली यूटिलिटी कंपनियां क्या इन सब के लिए पैसे खर्च करेंगी? क्या घर के मालिक इसके लिए पैसे खर्च करना चाहेंगे? हाइड्रोजेल की कॉस्ट कम हो रही है, एक्टिव कूलिंग से सस्ते हैं, पर देखना बाकी है कि क्या वे इंडस्ट्रियल स्केल पर कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। क्या ये हाइड्रोजेल्स इतने फायदेमंद हैं कि इन पर पैसा लगाया जाए? इंटरसिम ये वक्त ही बताएगा। वक्त की बात करें तो लाइफ स्पैन के सवाल पर आते हैं। शुरुआती टेस्ट्स ने रिसर्चर्स और कमर्शियल पार्टनर्स को एक्साइटेड किया है, पर हाइड्रोजेल्स समय के साथ सूख कर परफॉर्मेंस गिरा देते हैं। बैटरी की तरह परफॉर्मेंस में कितनी गिरावट एक्सेप्टेबल है? वे कब तक ठीक से काम करेंगे? 30 साल तक फूलने और पसीना निकलने के साइकिल्स का मॉड्यूल्स और उनके फ्रेम्स पर क्या असर होगा? जैसा कि क्योस्ट के एक रिसर्चर ने साफ साफ कहा, अगर मौजूदा मटेरियल 2 साल तक नहीं चल सकता तो हमें किसी दूसरे पर काम करना होगा। एक और बात सोचने वाली ये है कि कितना पानी एब्जॉर्ब होता है जो आसानी से वापस नहीं निकलता। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स पानी को इतनी एफिशिएंटली ट्रैप करते हैं कि वे उसे आसानी से छोड़ नहीं पाते। आप एक कपड़े को निचोड़ सकते हैं, लेकिन आप सोलर पैनल के पीछे चिपके हाइड्रोजेल्स को ठीक से निचोड़ नहीं सकते। जब आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे होंगे तो पड़ोसियों को समझाने के लिए गुड लक। आखिर में शुरुआती टेस्ट्स प्रॉमिसिंग हैं, पर ये पैनल्स असल में एक्सट्रीम मौसम को कितना झेल पाएंगे? मैं सिर्फ रेगिस्तान की गर्मी या ईस्टर्न सीबोर्ड की ठंड की बात नहीं कर रहा। बफेलो में बर्फीला तूफान आए तो क्या हाइड्रोजेल्स बार बार जमने पिघलने के साइकिल्स झेलेंगे? क्या सूखे के बाद उन्हें ठीक कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, इवेपोरेटिव कूलर्स अक्सर साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स जैसे इलाकों में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वहीं वे सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। सोचिए फ्लोरिडा बनाम एरिजोना में दौड़ने में कैसा लगता है। पसीना कूलिंग सोर्स के तौर पर ज्यादा असरदार लगता है जब शरीर ज्यादा ह्यूमिडिटी में डूबा ना हो। संक्षेप में, अभी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि हम नहीं जानते। तो पसीना बहाने वाले सोलर पैनल्स के मामले में हम कहां हैं? नासा के काम के टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल सिस्टम का इस्तेमाल करें तो आज हमने जो हाइड्रोजेल्स देखे हैं वे शायद सॉलिड 7 पर हैं, सफलतापूर्वक टेस्ट किए गए प्रोटोटाइप जो असली हालातों में काम करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट का वर्जन 8 पर है, क्योंकि उसे तपते सऊदी अरब और ठंडे अपस्टेट न्यूयॉर्क दोनों में महीनों तक टेस्ट किया गया है। इंडस्ट्री पार्टनर्स इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करने को इतने उतावले क्यों हैं? नंबर्स में देखते हैं। टेम्परेचर में हर डिग्री की कमी पर 0.5% का मीडियन एफिशिएंसी बूस्ट मिलता है, डेसिमल में 0.005। जैसा कि आप अब तक जान गए होंगे, कूलिंग से टोटल एफिशिएंसी बदल जाती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रिडक्शन के लिए आपको मिलता है 20 डिग्री सेल्सियस गुना 0.005, यानी 10% एफिशिएंसी में बढ़ोतरी। लेकिन पीवी पैनल्स वैक्यूम में काम नहीं करते। सिस्टम के साइज और बिजली की लागत शामिल करें। नॉर्मल बिना कूलिंग वाले पैनल्स महीने में 700 किलोवाट हवर बनाते हैं। $0.15 प्रति किलोवाट हवर पर ये महीने के $105 हुए, जो घरों के पीवी पैनल्स के लिए आम है। आइडियल धूप वाले हालातों में हाइड्रोजेल लगाइए, एरिजोना सिएटल नहीं, और 700 किलोवाट हवर बन जाता है 770 किलोवाट हवर, जिसकी कीमत है महीने के $115.50। जाहिर है ये जिंदगी बदल देने वाला पैसा नहीं, पर एक अच्छा बोनस है जो समय के साथ अपनी लागत निकाल लेता है। इसे इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाएं तो हिसाब और भी एक्साइटिंग हो जाता है। एक बड़ी फैसिलिटी जो महीने में 10 लाख किलोवाट आवर या लगभग 1000 मेगावाट आवर बनाती है, वो इन्हीं बेस्ट केस कंडीशंस में महीने के लगभग $15,000 बचा सकती है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये हमारा अपना एनालिसिस है जो ऑप्टिमल कंडीशंस मानकर किया गया है। जगह और लोकल बिजली की कीमतों से ये नंबर्स बहुत ज्यादा बदल जाएंगे। उदाहरण के लिए, जहां मैं रहता हूं वहां आपको लगभग $0.30 प्रति किलोवाट आवर देने होंगे, लेकिन इसकी आधी बचत भी हाइड्रोजेल्स को बड़े सोलर ऑपरेटर्स के लिए आकर्षक बना देगी, और इसमें पैनल की लाइफ बढ़ाने का फायदा तो हमने गिना ही नहीं है। कुल मिलाकर हाइड्रोजेल्स सोलर पैनल की परफॉर्मेंस बढ़ाने का सस्ता और आसान तरीका लगते हैं। ये अब ख्याली पुलाव वाले लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, ये टेस्ट की हुई टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें इंडस्ट्री का सपोर्ट और मार्केट तक पहुंचने का रास्ता मिला है। अभी रिसर्च बाकी है, और ये ठीक है, साइंस ऐसे ही काम करती है, पर अभी तक जो है वो बहुत कूल है। अगर आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, इन डेवलपमेंट्स को ट्रैक्शन मिल रहा है, या कहूं सोख रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि हाइड्रोजेल कूलिंग काम करती है या नहीं, बल्कि डिमांड पूरी करने के लिए इसे कितनी जल्दी स्केल अप करें। आप क्या सोचते हैं, क्या पैसिव कूलिंग ही भविष्य है, या ये पोरस पॉलीमर्स फेल हो जाएंगे? अगर आप देखना चाहते हैं कि ये हाइड्रोजेल्स कैसे हवा से पीने का पानी निकाल सकते हैं और क्यों ये पसीना बहाने वाले सोलर पैनल्स से पहले मार्केट में आ सकते हैं, तो पेट्रियन पर एक्सटेंडेड वर्जन देखें, जहां हम इस टेक्नोलॉजी की दोहरी जिंदगी जानेंगे। और नए सपोर्टर प्लस मेंबर डग स्ट्रेन का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा फॉलोअप पॉडकास्ट स्टिल टू बी डिटरमाइंड जरूर सुने, जहां बातचीत जारी रहेगी। दिमाग खुला रखें, जिज्ञासु रहें। अगले वीडियो में मिलूंगा।